फिर उन लोगों की बातें आगे जो आपकी बातें सुनते बड़े गौर से थे लेकिन अमल नहीं करना चाहते थे। फरमाया इनमें से बहुत से लोग हैं जो आपकी बातें सुनते हैं मगर आप क्या बहरों को सुनाएंगे जो खुद कुछ ना समझते हो, और इनमें से बहुत से लोग हैं जो आपको देखते तो हैं मगर क्या आप अंधों को राह दिखाएंगे, ख्वाह इन्हें कुछ ना सोचता हो। हकीकत यह कि अल्लाह लोगों पर जुल्म नहीं करता, लोग खुद ही अपने ऊपर जुल्म करते हैं। यानी हक को देखने वाले मानने की नीयत नहीं रखते, वो भी अल्लाह की नजरों में बहरे हैं, और हक को सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करना चाहते, अल्लाह ताला उनको जहां बहरा कह देता है। आज ये दुनिया की जिंदगी में मगन है और जिस रोज अल्लाह इनको इकट्ठा करेगा तो यही दुनिया की जिंदगी इनको ऐसी ही महसूस होगी गोया ये महज एक घड़ी भर आपस में जान पहचान को ठहरे थे। देखिए हम सब इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, आई नो माई हस्बैंड, आई नो माई किड्स, आई नो माई सन, वक्त पड़ता है ना सब भूल जाता है। बस सब वो बच्चे जिनसे आप बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं शादी होती बदल जाते हैं, फिर आप कहते हैं बहू बुरी, हालांकि बहू कैसे बुरी होगी अगर आपका बेटा ना बदलता वो कैसे बदलती। बस सब आप इतना दावा रखते हैं हस्बैंड ये मुझे पता ही लव्स मी, ही विल नॉट लीव मी, दिस दिस ये कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे, ऐसा चक्कर चलता है दूसरी शादी हो जाती है। कुछ कपल ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते कि कभी ये अलग भी रहेंगे, एक दिन ये अलग रहते, ऐसा एक चक्कर आता है तलाक हो जाती है। ये आपकी आंखों देखी चीजें होंगी। अल्लाह कहते हैं इस दुनिया में तुम सिर्फ तारुफ ले रहे हो, डोंट से दिस कि आई नो एवरीवन, मैं सबको जानती, सिर्फ अल्लाह की जात है जो हमें सही समझती है। हमेशा अपने लिए दुआ किया करें कि अल्लाह आज अगर जिंदगी में आफियत है, सुकून है, बच्चे भी ठीक है, शौहर भी ठीक है, ससुराल भी ठीक है, अल्लाह इसको कायम रखे। इसी लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ सिखाते थे कि लोगों अल्लाह से आफियत मांगा करो, क्योंकि आफियत क्या है, बचाना, हर बुरी घड़ी से बचाए। आज आपकी बेटी बड़ी खुश अपने घर में बैठी हुई है, कोई एक छोटी सी बात पे शैतान दिमाग घुमा देगा, चार लफ्ज बुलवा के वापस आ जाएगी। इसलिए हमेशा इस चीज की फिक्र करें आने वाले वक्त में अल्लाह हमारे लिए खैर हो, ऐसा ना हो कि हम वहां दूसरी तरफ चल पड़े तो अल्लाह सुबहान अल्लाह कहते हैं आज तुमने एक जान पहचान की है, तुम नहीं जानते दिलों को। इस वक्त तहकीक हो जाएगा कि फिल वक्त सख्त घाटे में रहे वो लोग जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को छुटलाया और हर किस वो राह रास पर ना थे, जिन बुरे नताइज से हम इनको डरा रहे हैं, इनका कोई हिस्सा हम आपके जीते जिनको दिखा दें या इससे पहले आपको उठा लें, बहरहाल इन्हें आना हमारी तरफ है और जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह इस पर गवाह है। वली कुल्ली उम्मत रसूल, हर उम्मत के लिए एक रसूल है, फिर जब किसी उम्मत के पास इसका रसूल आ जाता है तो इसका फैसला पूरे इंसाफ के साथ चुका दिया जाता है और इस पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं किया जाता। यहां फिर थोड़ी सी उम्मत मुस्लिमा पे बात होगी। देखिए जब कोई नबी किसी कौम में बजाते खुद मौजूद हो उसकी जिंदगी एक डेड लाइन होती है उम्मत के लिए, मान जाओ तो बच जाओगे, अगर कौम उस नबी का इनकार कर दे तो अल्लाह ताला उस कौम को तबाह बर्बाद करता है। यही असूल पीछे सूरज थम ने आराफ में पढ़ा, अब आगे सूरज यूनस और सूरज हूद में अंबिया के किस्सों में दोबारा देखेंगे। आज उम्मत मुस्लिमा को देखिए जितनी खराबियां कमियां कमजोरियां आज हमारे में आई हैं, कई साल हो गए ना, सदियां गुजर गई और अभी तक हम पनपे हुए हैं, क्यों? नबी नहीं है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला मौजज़ाना तौर पर लंबी उम्र दे देते तो ये उम्मत की जिंदगी इतनी लंबी नहीं होनी थी, जितनी बस नबी की उम्र थी उसके साथ उम्मत खत्म कर दी जाती। तो अल्लाह सुब्हान तआला यहां यही बताते हैं कि रसूलों की कदर करो। आज रसूल की किस सूरत को हम देखेंगे, इस इल्म की ये किताब देखिए, ये आप और उस तरह एंजॉय नहीं कर पा रहे जिस तरह ये सूरत वहां उतरी थी, जिस माहौल में ये उतरी थी, अगर आप उसको सामने रखें, घर घर में मुखालफत है, क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, ये क्या कुरान आ गया, ये क्या नई बातें बता रहे हैं, क्या हमारे बड़े थे ऐसे थे, क्या क्या कभी हमने कुरान नहीं पढ़ा, क्या सुना नहीं, घर घर मुखालफत थी और उस पर ये सूरह यूनुस उतरी थी। आप बार बार देख रहे हैं हर दूसरी आयत के बाद कुरान का जिक्र है, हर थोड़ी देर के बाद रसूल की मुखालफत है। तो आज मैं और आप जब इस किताब को सीखने आते हैं हमारी भी जिंदगी में ये तूफान आने चाहिए। आप कुरान पढ़े और आपकी मुखालफत ना हो तो मान लीजिए कि डायल्यूटेड वर्जन पढ़ रहे हैं, सीधी सी बात है, लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं। हकीकी कुरान जब जिंदगी में आता है मुखालफतों की झाग है। आगे इंशाल्लाह सूरत रात में एक बहुत प्यारी आयत पढ़ेंगे अगले पारों में जाकर। तो लिहाजा इस किताब को पढ़ते वक्त चुपके चुपके दिलों में ये दुआ किया करें कि अल्लाह इस किताब को जैसे सहाबा कराम ने लिया था आज हमें भी उसी तरह लेने की तौफीक अता फरमाए। एक और मक्का वालों का मसला क्या था, आखिरत को नहीं मानते थे, क्योंकि दुनिया जो इतनी वसी हो गई, कहते थे ये कैसे हो सकता है हम मरेंगे, हमने तो इतनी जल्जला प्रूफ बिल्डिंग्स बना ली, हमारे पास तो लॉन्ग लास्टिंग थिंग्स हैं। ये लफ्ज लॉन्ग लास्टिंग भी मुझे कभी समझ नहीं आया कितनी को लॉन्ग लास्ट होगी वो चीज़। और कभी आप कहते हैं एवरग्रीन, और वो जिस तरह आप कहते हैं अनब्रेकेबल, कभी आपने लो सुने अनब्रेकेबल, क्या दुनिया की कोई चीज़ अनब्रेकेबल है? कुछ भी तो नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं देखो ये दुनिया जितनी ज्यादा जमा के पायदार करते जाओगे, एक नुकसान होगा कि आखिरत से नजरें हट जाएंगी। इसीलिए अगली आयतों में उनके इस अमल पे तनकीद की गई कि ये आखिरत की बातों को खेल समझते हैं। कहते हैं कि अगर तुम्हारी ये धमकी सच्ची है तो आखिर ये कब पूरी होगी, कहो मेरे इख्तियार में तो खुद अपना नफा और जरर भी नहीं। हाईलाइट करें, अल्लाह के नबी भी खुद को नफा नहीं दे सकते, नुकसान नहीं दे सकते, किसी दूसरे को कैसे देंगे? सब कुछ अल्लाह की मशीयत पर मौकूफ है। हर उम्मत के लिए मोहलत की एक मुद्दत है, जब ये मुद्दत पूरी हो जाती है तो घड़ी भर की कमी या देर नहीं होती। इनसे कहो कभी तुमने सोचा कि अगर अल्लाह का अजाब अचानक रात को या दिन को आ जाए तो तुम क्या कर सकते हो? आखिर ये ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए मुजरिम जल्दी मचाएं? क्या जब वो तुम पर आ पड़े इस वक्त तुम इसे मानोगे? आप बचना चाहते हो हालांकि तुम खुद ही इसके जल्दी आने का तकाजा कर रहे थे। फिर जालिमों से कहा जाए कि अब हमेशा के अजाब का मजा चखो, और जो कुछ तुम कमाते रहे हो इसकी पादाश के सिवा और क्या बदला तुमको दिया जाता है? दोबारा देखिए अजाब की डांट है, और आप देखेंगे कि जब भी लोग गाफिल होते हैं, कुछ अरसा गुजर जाता है गफलतों में, अचानक कोई तकलीफ दे बात सुननी पड़ती है। बस तो वहां कोई इनफरादी जिंदगी में तकलीफें आती हैं, कुछ जलजले तो जमीन को हिला के किए जाते हैं ना, कुछ जलजले होते हैं जो आपके दिल की जमीन को हिला दिए जाते हैं। कोई ऐसा वक्त याद करे अनयूजल बात आपने सुन ली, किसी भाई की तरफ बहन की, किसी खानदान के शख्स की, अपने बच्चों की, अपने शौहर की। अल्लाह ताला कहते हैं ये मैं तुम्हें लरजाता हूं ताकि तुमको मेरी मौजूदगी का एहसास हो, तुम्हें मेरी जरूरत इस दुनिया में महसूस हो और तुम मेरी तरफ झुको। लेकिन जब इंसान अल्लाह की तरफ नहीं झुकता तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे बंदे को फिर तोड़ने के लिए एक आखिरी क्यामत तो रखी हुई है। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे दिलों में अपना खौफ डाल दे। फिर देखिए उनकी डिटाई, फिर पूछते हैं क्या वाकई ये सच है जो तुम कह रहे हो? कहो मेरे रब की कसम ये बिल्कुल सच है, यानी कयामत, और तुम इतना बलबूता भी नहीं रखते कि इसको जहूर में आने से रोक दो। कल तो लोग कयामत के आने को नहीं रोक सकते थे, कि आज की मॉडर्न तरक्की के बाद कयामत को रोका जा सकता है? लोग कहते हैं जलजले को रोकने की बातें मौजूद हैं, आते हैं जलजले तो उधर कब जाते, कहां जाते हैं वो सिस्टम? बारिशें बरसनी शुरू हो जाएं, सैलाबों को रोक सकते हैं? तो क्यामत का अगर पहिया चल पड़ा तो कोई रोकेगा? कोई इसको रोक नहीं सकता। अगर हर उस शख्स के पास जिसने जुल्म किया हो रुए जमीन की दौलत भी हो तो इस अजाब से बचने के लिए वो इसे फिदिये में देने पर आमादा हो जाएगा। जैसे चोर को आता देखकर हाथ की चूड़ियां उतार के खुद दे देंगे, चाबियां दे देंगे, ये ले लो मेरी जान छोड़ दो। अल्लाह कहते हैं अगर आज अजाब सामने आ जाए अपने हाथ से अपने दौलत और अपनी चीजें देंगे, इनको ले लो मुझे छोड़ दो, लेकिन अल्लाह उस वक्त कबूल नहीं करेंगे। जब ये लोग इस अजाब को देख लेंगे तो दिल ही दिल में पछताएंगे, मगर इनके दरमियान पूरे इंसाफ से फैसला किया जाएगा और कोई जुल्म इन पर नहीं होगा। अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, सुनो आसमानों जमीन में जो कुछ है वो अल्लाह का है। सुन रखो अल्लाह का वादा सच्चा है, मगर अक्सर इंसान जानते नहीं, वही जिंदगी बख्शता और वही मौत देता है, और इसी की तरफ तुम सबको पलटना है। बात तो आसान है लेकिन जरा गौर से सोचे, मेरी और आपकी वापसी किस तरफ है? अल्लाह को, और अल्लाह की तरफ जाने से पहले पूरा काम करेंगे तो बात बनेगी। इसके बाद आपकी आयतें, अगर आप पीछे बैनर पे देखें तो यही आयतें लिखी हुई हैं। इस प्लेटफॉर्म का यही स्लोगन है, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फिस सुदूर व हुदा व रहमतुल लिल मुमिनीन। लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ गई, ये वो चीज है जो दिलों के अमराज की शिफा है, और जो इसे कबूल कर ले इनके लिए रहनुमाई और रहमत है। लिहाजा कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाउन। اے نبی کہو یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے، یہ چیز اس کے اس نے یہ چیز بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے اور یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ اس قرآن کی چار خوبیاں، اور اگر ہم اس قرآن کو آج اس نظر سے دیکھ لیں کہ یہ میرے لیے معجزہ، دلوں کو نرم کرنے والی چیز کو معجزہ کہتے ہیں، واس پینیٹریٹنگ ورڈز، کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ کتنے لوگوں کو قرآن سنتے وقت محسوس ہوتا ہے کہ ان کے دل میں جذب ہو رہا ہے، وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ ایک بارش کی طرح جب پانی برستا ہے تو ایسے سلولی سلولی دل میں جاتا ہے اور واس دلوں کو نرم کرتا ہے۔ خود سے پوچھئے کیا ان پاروں کو سن کر میرا دل نرم ہو رہا؟ اگر نہیں ہو رہا تو دیٹ مین آپ نے اس کے واس کے ٹاپک کو ختم کر دیا۔ بعض دفعہ وازوں میں شدت اتنی ہوتی ہے کہ وہ واس کا بنے گا کانوں کا بوجھ بنتا ہے۔ تو اس کتاب سے دلوں کو نرم کرنا۔ پھر دوسری اس کی خوبی، شفاء لما فی الصدور، دل کی بیماریوں کا علاج۔ کیا کیا بیماریاں ہیں دلوں میں؟ روگ، شرک، کفر، دنیا کی محبت، دنیا کا ڈر، غصہ، گرجز اور سٹریس اور ٹینشن، کتنی بیماریاں آج انسانیت کو لاحق ہیں، یہ قرآن واللہ ہی اس کا علاج کرتا ہے۔ 3 سیکنڈ دیتی ہوں، آپ اپنی متوقع بیماری نوٹ کریں۔ دیکھیں ہر ایک کے دل کو ڈیفرنٹ بیماری ہے نا، کسی کی حب دنیا، جیسے میں آپ کو کسی کی بات سنا دیتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ مجھے شاپنگ کا کریز تھا، ابھی بھی تھا ان کو جب انہوں نے میرے سے بات کی، وہ کہتی تھی میرے لیے دعا کریں، کہتی میرے ہاتھوں کو کھجلی ہوتی، گھر میں کام کرتی ہوں جلدی جلدی کیوں سمیٹتی ہوں، آئی پیڈ لے کے بیٹھ جاؤں گی، کبھی ایک ویب سائٹ چیک کروں گی، کچھ ضرورت بھی نہیں، صرف کہتی مجھے کریو ہے، کریونگ ہے کہ میں نے شاپنگ شاپنگ، اور چیزیں آتی ہیں بعض دفعہ وہ ڈبوں سمیت اٹھا کے کلوزٹ میں ڈال دیتی ہیں، یوز بھی نہیں ہوتی، لیکن مجھے کریونگ ہے۔ ہر ایک یہ بیماری ہے، قرآن اس کا علاج کیسے کرتا ہے؟ کل متاؤ دنیا قلیل، یہ 4 دن کی دنیا کے پیسے میں کیوں لگاؤں، اور سنبھالے کون اور رکھے کون اور پہنے کون، اور اس کو کرنا کہ آہستہ آہستہ آپ کے دل سے شاپنگ کا شوق کم ہوگا، اور یہ آپ میں سے بہت ساروں کے ہسبینڈس گواہی دیں گے۔ کئی بردرس ہمیں دیتے ہیں کہ ان کی بیگمات کے اب شاپنگ کے بل کم ہو گئے، وہ اس لیے بھی خوش ہوتے ہیں ان کورسز سے کہ یہ اب کریڈٹ کارڈ کے بل بہت کم دے رہی ہیں آج کل۔ اور دیکھیے جس کو اصلی چیز نظر آتے وہ نقلی لیتا ہے، کون نقلی لے جو اصلی لے نہیں سکتا؟ یہ قرآن ہمیں اتنے خوبصورت طریقے سے جنت دکھا دیتا ہے، اس کے ہیرے موتی کنگن چوڑیاں کیا کچھ ہے، یہ پوری دنیا واللہ ہی مٹی اور ریت کی چیز لگتی ہے۔ ضرورت کی چیزیں آپ رکھ لیں، آپ کو مل جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے مارے مارے نہیں پھریں گے تو شاپنگ کم ہو گئی۔ اور کوئی بیماری آپ میں سے بتائے تاکہ میں اس کا علاج بتاؤں۔ کسی کو اپنی کو بیماری اتنی ضرورت ہے؟ کچھ لوگوں میں ہوتی ہے، کچھ میں نہیں ہے۔ ٹائم ویسٹنگ، بالکل یہ بیماری ہے۔ اب آپ دیکھیں آپ ٹائم ویسٹ کرتے تھے، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اس دنیا میں ہم تھوڑی زندگی لے کر آئے ہیں۔ حدیث قرآن آگے آپ پڑھیں گے، ایک آیت آئے گی کہ لوگ قیامت کے دن کھڑے ہو کے سوچیں گے ہم دنیا میں کتنا رہیں، تو کوئی کیا کہے گا، یومن او بعد یوم، ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ۔ جو سب سے سمجھ والا ہوگا نا وہ کہے گا نہیں نہیں اتنا تھوڑا نہیں رہے، ہم 10 دن رہتے اتنا اس دنیا میں۔ اب آپ سوچیے آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے تو کیا آپ ٹائم ویسٹ کریں گے؟ سستی کتنی بڑی بیماری ہے آج کے دور میں، نیند اوور سلیپ کتنی بڑی بیماری ہے۔ بعض لوگوں کی اگر اوپر چپکے سے کوئی ویڈیو بنا رہا ہو نا صبح بستر سے اٹھ کر چائے باتھ روم میں جانے سے لے کر چائے کا کپ پینے تک، تو ایسے لگے گا سلو موشن چیز چل رہی، یوں 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 سوتے سوتے بیٹھے ہوئے، کیوں قدر ہی نہیں ہے، ڈر لگتا ہے لوگوں کی اس بات سے کہ آپ تھکتے نہیں ہیں۔ آپ کبھی بھی کوئی یہ بات کہتے، میں نے کہتی ہوں کہ وقت فرصت کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ لوگوں کا شوق اور ان کا پیشن اور ان کی ضرورت کام کراتی ہے، کبھی بولنے کی طاقت نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی، لیکن جب بیٹھ جاؤ آ کے ادھر تو خاموش ہونے کو دل نہیں کرتا، کیوں، شاید کسی کو فائدہ ہو جائے۔ یہ قرآن اتنی پیاری چیز ہے، اور یہ اس کا معجزہ ہے، یہ آپ کو بلوا لیتا ہے، آپ اس کے بغیر نہیں بول سکتے۔ اور آپ سوچتے ہوں گے میں ایسی بولتی رہتی ہوں، کبھی گھر جاؤں ہسبینڈ پوچھیں اچھا سناؤ کیا، کوئی بات سو پوچھیں میں کہوں گی مجھے نہیں بولنا، کہتے ہیں ابھی تو بہت بول رہی تھی۔ تو آپ دیکھیں آپ اپنے لفظوں کو تو لیں گے، اس قرآن کے ساتھ اگر آپ کا ایک لائیولی تعلق ہو گیا، شفاء لما فی الصدور، سب دل کی بیماریاں دھل جائیں گی۔ और इसी पे वो लेक्चर है जो आप में से अक्सर ने मेरे हालांकि सुन लिया होगा, कुरान मेरे दिल की बहार। कोई है जिसने नहीं सुना अभी तक? हैंड रेस करे अगर रिसेप्शन पे तो आज लेके जाए और इनको लिंक दे दे। मेरा हाल है कि हमने कोई हजारों बार वो लेक्चर प्ले किया आज तक ऑनलाइन और ऑन साइट, और उसकी इतनी दफा सीडी बनी, कई लोगों के दिल के ताले खुल गए सिर्फ इस एक लेक्चर से, क्योंकि उसमें कुरान की चार खूबियों को बयान किया गया। ये कुरान की शायद की खूबी है कि लोगों के दिलों पर असर होता है। लेकिन यकीन करें, आज मेरा और आपका फर्ज बनता है प्यारों में, अपनों में, घरों में, जॉब्स पे, जहां जिसका दिल खुला हुआ ना देखे आप उसको वो लेक्चर दे दें। उसका लिंक आपको भेजेंगे, आप फेसबुक पे डाल दें, व्हाट्सएप पे दे दें, जिसको दे सकते हैं पानी की तरह हम करें, क्योंकि मेरे और आपके कहने पे लोग नहीं आएंगे, तब आएंगे जब उनका दिल कहेगा वहुदम व रहमा। फिर कुरान हिदायत बनता है, इससे गाइडेंस मिलती है, फिर रहमत बनती है जब इसको सादा पढ़ते हैं। जब इसके एक एक लफ्ज पे 30-30 नेकियां और 10-10 नेकियां मिलती हैं तो फिर अजर है। और अल्लाह कहता है जो कुछ जमा करते हो हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। आप क्या जमा करते हैं मैं आपसे ही पूछ लूं? कुरान कहता है जो जो कुछ आप जमा करते हैं कुरान उससे सबसे प्यारी चीज है। जी कोई आप में से बताए क्या जमा करने का शौक है? देखिए इतने आप भोले नहीं है, मुझे पता है आपको बर्तनों का जमा करने का शौक है, किसी को बेडशीट्स का शौक है, किसी को बोल दीजिए अब तो ज्वेलरी डेकोरेशन पीसेस, और जी कपड़ों का शौक है, और बैग्स, क्रिस्टल, शूज, और मेकअप, और इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक है। जी आप तन्वीर भाई बर्तनों का शौक है। जी आपको किस चीज का शौक है? जी बर्तनों का शौक है। आपको किस चीज का शौक? घूमने का शौक है। आप इस आयत को पढ़िए, आप सब के वो इनपुट के साथ, कुल भी फदलिल्लाहि व बि रहमतिही फबिज़ालिका फलयफरहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। कह दीजिए ये इन तमाम चीजों से बेहतर है जो लोग जमा करते हैं, बस इसके साथ खुशियां मनाओ। अब आपको जो कुछ आपने बताया आप उस पे क्वेश्चन लिखिए, जो कुछ जमा करने का आपको शौक है क्या वो आपको इस किताब के सीखने से रोक तो नहीं रहा? ये अब आपका एक टेस्ट है। अल्लाह आपको मुबारक दे रहे हैं, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपको मुबारक दी। जैसे लोग दुनिया में मुबारकें देते हैं, घर बने कहते हैं मुबारक हो, कितना प्यारा घर है, किसी को मेडिकल कॉलेज में दाखला मिले कहते हैं मुबारक हो, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में दाखला मिल गया मुबारक हो। क्या कुरान कोर्स में दाखले पर पार्टीज करते हो? क्या उसकी मुबारकें देते हो, हार फूल देते हो? यू आर सो ब्लेस्ड, तुम्हें कुरान कोर्स में दाखला मिल गया, वो तो ड्राइंग है, मुल्लानी बन जाओगी और अब्बा अम्मा लगोगी और वो बनोगी। तो याद रखिए कि इस खुशी को हम करें। अच्छा लोग कब आपकी इस खुशी को महसूस करेंगे? जब आप इसको खुद करेंगे। और वो कैसे? आप लोगों को ऐसे इनवाइट करेंगे इस किताब की दावतों में जैसे कि आप अपने बच्चों के लिए करते हैं। जैसे अब नेक्स्ट फ्राइडे हमने एक ट्रायल इफ्तारी रखी है ना, देखते हैं उसमें क्या होता है। अगर आपका इनपुट अच्छा हुआ, आपकी वजह से आपकी दोस्तें आई साथी आए, तो हम इसको हर 10 बारों के बाद कर लेते हैं। आमतौर पे जो हमारे डिटेल कोर्सेज होते हैं उसमें काफी पार्टियां होती हैं, और लोग अक्सर पूछते हैं ना इतने लोग कैसे जमा होते हैं, तो हम अक्सर हंस के कहते हैं ये पार्टियों से जमा हुए हैं, कोई सिर्फ बकरा की तकमील की दावत में आ गया। और दोस्त बताते ही ऐसे हैं, वो मैं अपनी दोस्त के कहने पर सिर्फ बकरा की तकमील में आई थी ना तो मैं आ गई, और फिर उस दावत को इतने प्रोटोकॉल से करें कि इज्जत दें दीन को। जब आप अपने इस दीन को इज्जत देंगे ना लोग भी देंगे। देखिए पहले भी मैंने ये जिक्र किया था कि जब पढ़े लिखे लोग दुनिया की चीजों को आगे पेश करते हैं हमें दुनिया अच्छी लगती है, पढ़े लिखे लोग जब दीन को पेश करेंगे दीन अच्छा लगेगा, खूबसूरत लोग इस कुरान को पकड़ लेंगे कुरान खूबसूरत लगेगा। जब हम इस किताब को इज्जत दें, ऑनर दें, ये मेरे कुरान का फंक्शन है। अब आप सब दोस्तों को बुलाएं, और इंशाल्लाह जब आप इसमें होंगे तो हम कोशिश सब यही करें मिलके, और इस पे आपके साथ वक्त पता नहीं इनको मिल रहा नहीं, बात ये कर रहे हैं नहीं, लेकिन आप खुद इसमें अपना शौक दिखाएं। आप सोचें कि आपके बच्चे की शादी है, किस किस को बुलाऊंगी, किस प्यार से बुलाऊंगी। एक होती खबर दे देना और एक होती है दावत देना। आप कहते हैं सलाम अलैकुम, वहां एक पार्टी हो रही है, खुदा हाफिज, वो कहेंगे व्हाट आई एम गोइंग टू। लेकिन यकीन कीजिए कि आप इसको इज्जत दें, आपका शौक, आपका जज्बा बताएगा दूसरों को कि ये कुरान अब आपकी जिंदगी में क्या हैसियत रख रहा है। वल्लाही अगर कोई मुझसे ये पूछ ले तो मैं तो बगैर किसी ताकुब के, एक सेकंड का गैप लिए बगैर कह दूं कि मुझे अपना ये कुरान, इसको पढ़ना, इसको पढ़ाना, इसको सीखना, इसका दुनिया की हर चीज से प्यारा है। अगर एक पलड़े में सारे रिश्ते भी डाल देना, شوہر سے لے کے ماں باپ بھائی بہن، اور دوسری طرف یہ قرآن اور اس کی تعلیم ہے، تو میں اس کو پکڑوں گی. یہ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ وہ چیز ہے جو آپ کو ساری دنیا سے بے نیاز کر دیتی. آپ مجھے انویٹیشن دیتے ہیں، ادھر چلیے سیر کرتے، میں بہت خوش ہوں گی. آپ کہیں گے آئیں ہلز پہ چلتے ہیں سیر کرتے، میں خوش ہوں گی. اللہ کی کائنات کو دیکھنا ہے. لیکن اگر آپ مجھے کہیں گے کہ وہاں دور چلیں، چار چھ لوگ ہیں کہ جن تک کبھی میسج نہیں پہنچا، تو میں وہ پچھلی سب چیزیں کینسل کر کے آپ کو کہوں گی کہ ہم وہاں چلتے ہیں، وہاں رستے میں سینس دیکھ لیں گے، چار لوگوں کو اللہ کی بات دے کے آ جاتے ہیں، مجھے اس میں زیادہ خوشی ملے گی. آپ کہتے ہیں سو جاتے ہیں، خوشی خوشی ہے، لیکن اگر آپ اس کو قرآن سے چینج کرتے ہیں، آئی ول ٹیک دس. اس میں اتنا سکون ہے، اس میں اتنی خیر ہے، اتنی یہ پیاری کتاب ہے. کیا نیند آپ کو سکون دے گی جو یہ کتاب آپ کو سکون دیتی ہے. اور آج انسانیت اس کتاب کو چھوڑ کے دکھی ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم سب کو دوسری طرف لے چلیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہمیں لگا دے.